पृष्ठ संख्या 531, अध्याय 20, भारत की बृहत पाषाणिक समाधियां। मनुष्य एक मर्त्य प्राणी है। अत्यंत प्राचीन काल से ही मानव के लिए मृत्यु जिज्ञासा, रहस्य, भय, आस्था और श्रद्धा का विषय रही है। मृतक के अंतिम संस्कार की शुरुआत नियंडरथल मानव एक लाख से 35,000 ईसा पूर्व ने संभवतः किया था। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मानव की अंत्येष्टि संबंधी विधियों में विविधता तथा जटिलता का समावेश होता गया। उच्च पुरापाषाण काल में मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री के रूप में पाषाण और हड्डियों आदि के बने हुए अस्त्र शस्त्र तथा आभूषण इत्यादि रखे जाने लगे। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों में खाद्य पदार्थ भरकर मृतक के साथ दफनाने की प्रथा प्रारंभ हुई। मेसोपोटामिया और मिश्र आदि में ऐतिहासिक काल की ऐसी राजकीय समाधियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें मृतक राजा के साथ उसकी रानियां, प्रिय परिजन, रथ, बैल, अन्य पालतू पशु, सांसारिक उपभोग की वस्तुएं, सोने चांदी के आभूषण आदि दफनाए गए थे। भारत में इस प्रकार की कोई राजकीय समाधि अभी तक नहीं मिली है। बृहत पाषाणिक अथवा महापाषाणिक महाश्म समाधि शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर है। मेगालिथ शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के मेगास और लिथास, इन दो शब्दों के संयोग से हुई है। मेगास का अर्थ विशाल और लिथास का तात्पर्य पाषाण है। अतः इस संज्ञा से एक ऐसे स्मारक का बोध होता है जिसके निर्माण में बृहत पाषाण खंडों की प्रमुख भूमिका होती है। विशाल एवं अनगढ़ प्रस्तर खंडों से निर्मित स्मारकों के लिए पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में मेगालिथ शब्द का प्रयोग सन 1840 और 1860 के आसपास होने लगा था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद वी गार्डन चाइल्ड ने बृहत पाषाणिक स्मारकों की संरचना को उद्दिष्ट कर लिखा है कि ये किसी अंधविश्वास संबंधी अनुष्ठानिक अथवा धार्मिक उद्देश्य से बनाए जाते थे। विशिष्ट प्रकार के इन स्मारकों का निर्माण या तो शवों को दफनाने के लिए अथवा मृत व्यक्ति की स्मृति को स्थायी बनाए रखने के लिए किया जाता था। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार मेगालिथ प्रायः विशाल अनगढ़ पाषाण खंडों से निर्मित उन स्मारकों को कहा जाता है जिनका मृतकों को दफनाने के लिए अथवा मृतकों के स्मारक के रूप में निर्माण किया गया। पृष्ठ संख्या 532 गया रहा हो। इस प्रकार वे स्मारक अंतिम संस्कार से संबंधित समाधिकरण, दाह संस्कार स्मारक या किसी धार्मिक परंपरा से संबद्ध माने जा सकते हैं। आजकल मेगालिथ शब्द का प्रयोग व्यापक तथा सामान्य अर्थ में किया जाता है। बृहत पाषाणिक समाधि के अंतर्गत आने वाले सभी स्मारक पत्थर के नहीं होते हैं। दक्षिण भारत के लौह युगीन अस्थि कलशों और शव मंजूषा की गणना भी मेगालिथों के रूप में की जाती है, जबकि ये मिट्टी के बने हुए होते हैं और इनके निर्माण में पत्थर का रंच मात्र भी प्रयोग नहीं किया गया है। बृहत पाषाणिक समाधियों का भारत की ही नहीं अपितु विश्व के पुरातत्व में भी महत्वपूर्ण स्थान है। पुरानी दुनिया के यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों के विभिन्न देशों में बृहत पाषाणिक समाधियां मिली हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, स्वीडन, हॉलैंड आदि यूरोप महाद्वीप के देशों में बृहत पाषाणिक समाधियों के पुरावशेष विद्यमान हैं। एशिया में फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान आदि देशों के विभिन्न भागों में बृहत पाषाणिक समाधियों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। अफ्रीका महाद्वीप के देशों में अल्जीरिया, मिस्र, न्यूबिया, इथियोपिया आदि का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है। यूरोप और पश्चिमी एशिया में बृहत पाषाणिक समाधियों का जो विशद विवेचन किया गया है उससे इस संस्कृति के विविध पक्षों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। इन उपर्युक्त क्षेत्रों में बृहत पाषाणिक पुरावशेषों के साथ नवपाषाणिक उपकरणों की उपलब्धि के आधार पर यूरोप और पश्चिमी एशिया के कुछ भागों में बृहत पाषाणिक संस्कृति के आविर्भाव का समय द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में अथवा उसके कुछ पहले ही माना जा सकता है। भारत में बृहत पाषाणिक समाधियां अभी तक निम्नलिखित क्षेत्रों से प्रकाश में आई हैं: एक दक्षिण भारत, दो उत्तर भारत और तीन विदर्भ क्षेत्र। पृष्ठ संख्या 553। दक्षिण भारत के बृहत पाषाणिक समाधियां। दक्षिण भारत में बृहत पाषाणिक समाधियों के अन्वेषण की परंपरा लगभग 150 वर्ष प्राचीन है। कर्नल मीडोज टेलर ने सन 1851 और 1862 में कर्नाटक प्रांत के गुलबर्गा जिले में स्थित शोरापुर दोआब क्षेत्र रेखाचित्र एक भारत बृहत पाषाणिक समाधि संस्कृति का प्रसार। पृष्ठ संख्या 534 की बृहत पाषाणिक समाधियों के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया था। अलेक्जेंडर डी नामक पुराविद ने सन 1889 से 1905 के मध्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदिच नल्लूर नामक पुरास्थल पर अनेक अस्थि कलशों का उत्खनन कराया था और सन 1904 से 1908 के बीच पेरुम्बूर नामक बृहत पाषाणिक पुरास्थल का उत्खनन कराया था। इस संदर्भ में सन 1903 से 4 के मध्य लुई लेपिक द्वारा आदिचन नल्लूर के क्षेत्र में किए गए अन्वेषण का भी उल्लेख किया जा सकता है। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सन 1901 में मद्रास संग्रहालय के अध्यक्ष एडगर थर्स्टन के अनुरोध पर मद्रास संग्रहालय के पुरावशेषों, पुरानिधियों और दक्षिण भारत के बृहत पाषाणिक समाधियों की सूची तैयार किया था। ये अयप्पन ने सन 1935 में अपने एक निबंध में लगभग 35 प्रकार की बृहत पाषाणिक समाधियों का उल्लेख किया था। इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस समय तक बृहत पाषाणिक समाधि की न तो कोई मानक परिभाषा थी और न ही प्रकारात्मक विभाजन ही स्पष्ट था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से वीडी कृष्ण स्वामी के नेतृत्व में सन 1944 में दक्षिण भारत के बृहत पाषाणिक समाधियों का सुव्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की समाधियों के प्रकारों के विषय में पहली बार पुरातत्व वेत्ताओं को अपेक्षाकृत प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हुई। दक्षिण भारत के बृहत पाषाणिक समाधियों के अनुसंधान को ब्रह्मगिरी नामक पुरास्थल के उत्खनन के पूर्व कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिल पाया था। यत्र तत्र इन समाधियों के विस्तार के विषय में पुरातत्व वेत्ताओं ने अपने मत अवश्य व्यक्त किए थे। व्हीलर द्वारा ब्रह्मगिरी के सन 1947 में उत्खनन ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के पुरातत्व विशेषकर दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इस उत्खनन के बाद यह बात कही जाने लगी कि दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक संस्कृति काफी पुरानी है। दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरातात्विक अन्वेषण किए गए हैं उनसे यह पता चलता है कि इस तरह की समाधियों का प्रसार मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल प्रदेश में दिखलाई देता है। कतिपय सांस्कृतिक विशेषताएं दक्षिण भारत के बृहत पाषाणिक समाधियों में समान रूप से मिलती हैं, जैसे कृष्ण लोहित मृदभांड और लोहे के उपकरण आदि, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इन सभी क्षेत्रों में हर प्रकार की समाधियां भी समान रूप से मिलती हैं। बृहत पाषाणिक समाधियों के प्रकारों के प्रसार में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। केरल में शैलकृत कृत्रिम गुफाएं मिलती हैं। इनके समरूप उदाहरण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में नहीं मिलते हैं। दक्षिण भारत की महापाषाणिक पृष्ठ संख्या 535 समाधियों से संबंधित अनेक पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है, जिनमें ब्रह्मगिरी, मास्की, संगनकल्लू, पिकलीहल, टी नरसीपुर, नागार्जुन कोंडा, सिंगनपल्ली, पलवाय, आदिचन नल्लूर, चिंगलपट्ट, साणूर, कुन्नतूर, अमृत मंगलम, सिंगमेडु, कोरकेई, पय्यमपल्ली, पोरकलम, त्रिचुर जिला आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक समाधियों के प्रकार। दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक समाधियों की अंतर्निहित संस्कृति के एक होते हुए भी समाधि प्रकारों में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियों के विविध प्रकारों में से अधोलिखित सात विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चित्र दो, ब्रह्मगिरी गवाक्षयुत डोलमेन समाधि, सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डोलमेन समाधि। डोलमेन समाधियाँ आयताकार मेज के आकार की होती हैं। इनका निर्माण जमीन की सतह के ऊपर ही किया जाता था। डोलमेन केल्टिक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ पत्थर की मेज है। पृष्ठ संख्या 536। सामान्यतः मृतक को दफनाने के लिए समतल जगह पर संदूक के आकार की कब्र को बनाने के लिए चार से अधिक शिलाओं को चारों तरफ खड़ा कर दिया जाता था। इनको ऑर्थोस्टेट कहा जाता था, जिन्हें दक्षिण भारत में कभी कभी स्वास्तिक के आकार में सजाया जाता था। ऑर्थोस्टेट प्रायः 15 सेमी से 20 सेमी मोटे पाषाण खंडों के बने हुए मिलते हैं। डोलमेन समाधि का दिक स्थापन अधिकांशतः पूर्व पश्चिम की ओर मिलता है। पूर्वी ऑर्थोस्टेट में एक वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार अथवा चतुर्भुजाकार छेद होता है, जिसे प्रवेश छिद्र या गवाक्ष पोर्टहोल कहा जाता है। इस छिद्र के निर्माण का प्रयोजन संभवतः मृतात्मा को समय समय पर भेंट, पूजा चढ़ाने या अस्थियां डालने के लिए था। शव तथा अंत्येष्टि सामग्री रखने के लिए कब्र की फर्श पर पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा रखा जाता था, जिसे फर्श की शिला फ्लोर स्टोन कहा जाता था। चित्र तीन, चिंगल पेट डोलमेन समाधि, सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। डोलमेन को ऊपर से ढकने के लिए एक या एक से अधिक शिलाओं का उपयोग किया जाता था, जिसे ढक्कन कैपिंग स्टोन कहा जाता था। कभी कभी डोलमेन को बीच से दो या चार भागों में विभाजित करने के लिए अतिरिक्त शिलाओं का उपयोग करके अलग अलग कई प्रकोष्ठ बना दिए जाते थे। एक कब्र में एक सिंगल अथवा अनेक मल्टीपल मृतकों को दफनाया जाता था। अंत्येष्टि सामग्री कब्र के अंदर और उसके किनारे किनारे चारों ओर रखी हुई मिलती है। कब्रों में कृष्ण लोहित मृदभांड, लौह उपकरण और मिट्टी की बनी हुई छोटे छोटे पैरों से युक्त शव मंजूषाएं, ताबूत भी मिली हैं। इस प्रकार की कब्रों के उदाहरण कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु में चिंगलपेट से मिली हैं। पृष्ठ संख्या 537। संगोरा समाधि। संगोरा समाधि के निर्माण के लिए जमीन में 30 सेमी से लेकर 1.5 मीटर से 2 मीटर तक गहरा गड्ढा खोदा जाता था। गड्ढे का व्यास 2.40 से 3.60 मीटर तक मिलता है। गड्ढे के फर्श पर मनुष्य के अस्थि अवशेष। चित्र चार, चिंगल पेट संगोरा समाधि, सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। जानवरों की हड्डियां, मिट्टी के बर्तन, तांबे और लोहे के उपकरण तथा मनके आदि रखकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता था। गड्ढे में कभी कभी पादाधर युक्त मिट्टी के शव पेटिकाएं भी रखी हुई मिली है, जिनमें मनुष्यों की अस्थियों के अतिरिक्त लौह उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कुछ शव पेटिकाओं को भेड़ा अथवा हाथी की आकृति का बनाया गया था। इस प्रकार की शव पेटिकाएं तमिलनाडु के चिंगलपट्टू जिले से मिली हैं। गड्ढे को मिट्टी से भरने के बाद उसके किनारे किनारे और ऊपर पत्थर के टुकड़े बिछा दिए जाते थे, जिनका फैलाव गोलाकार अथवा आयताकार होता था। इन टुकड़ों को कुछ ऊंचाई तक रखा जाता था, जिससे दूर से ही देखने पर समाधि का आभास हो जाए। छत्रशिला। छाते से मिलती जुलती आकृति की समाधियों को छत्रशिला, अम्ब्रेला स्टोन कहा जाता है। दक्षिण भारत के स्थानीय लोग इन्हें टॉपिकल कहते हैं। ये छत्रशिलाएं प्रायः मानव समाधियों के ऊपर स्थापित की जाती थी। इस प्रकार की छत्रशिलाओं के निर्माण के लिए जमीन पर चार खड़े पत्थर स्थापित किए जाते थे, जिनके ऊपर गुंबदाकार एक बड़ा शिलाखंड रख दिया जाता था। दूर से देखने पर खुले हुए छाते की तरह प्रतीत होने के कारण इन समाधियों को यह नाम प्रदान किया गया है। केरल प्रांत के कोचीन जिले में स्थित आर्यनूर और चेरमनन गाद नामक पुरास्थलों से इस प्रकार की छत्रशिला समाधियां मिली हैं। पृष्ठ संख्या 538, चित्र 5, चेरमनन गाद छत्र समाधि, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। फण शिला, इस प्रकार की समाधियों में गड्ढा खोदकर उसमें मानव अस्थियां और अंत्येष्टि सामग्री को रखकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता था। इसके बाद कब्र के ऊपर गोलाकार एक शिला औंधा कर रख दी जाती थी। दूर से देखने पर चित्र 6, चेरमनन गाद फण समाधि, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पृष्ठ संख्या 539, इस प्रकार की समाधियां सांप के फैले हुए फण की तरह प्रतीत होती हैं, इसलिए इन्हें फण शिला कहा जाता है। दक्षिण भारत की स्थानीय भाषा में इस प्रकार की समाधि को कुडाइकल कहते हैं। समाधि के ऊपर कभी कभी 5 से लेकर 12 तक शिलाएं वृत्ताकार रखी हुई मिलती हैं। इन्हें अनेकानेक फण शिलाएं कहा जाता है। इन शिलाओं का बाहरी हिस्सा तराशा हुआ होता है। पाषाण स्तंभ मेन्हीर दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में ग्रेनाइट पत्थर के एकाश्मक मोनोलिथिक स्तंभ मिलते हैं, जिन्हें मेन्हीर कहा जाता है। कब्र के संकेत सूचक चिन्ह के रूप में उसकी बगल में इस प्रकार के पाषाण स्तंभ स्थापित किए गए रहे होंगे, जिन क्षेत्रों से अन्य बृहत पाषाणिक समाधियां मिली हैं। चित्र 7, अनपार, त्रिचूर, कोचीन, पाषाण स्तंभ, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पृष्ठ संख्या 540, उन्हीं क्षेत्रों से मेन्हीर भी मिले हैं। मेन्हीर 1.50 मीटर से लेकर 2.40 मीटर लंबे मिलते हैं, लेकिन यदा कदा 6 मीटर लंबे मेन्हीर भी मिलते हैं। मेन्हीरों का दिक् स्थापन उत्तर दक्षिण की ओर प्रायः मिलता है। एक स्थान पर 3-3, 4-4, 5-5 की 3-4 और 5 पंक्तियों में मेन्हीर मिलते हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एक ही स्थान पर सैकड़ों की संख्या में मेन्हीर प्रतिवेदित है। अभी तक कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित मास्की नामक पुरास्थल के मेन्हीर को छोड़कर किसी अन्य मेन्हीर का उत्खनन नहीं किया गया है, इसलिए इनके सांस्कृतिक संदर्भ के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। मास्की के मेन्हीर के उत्खनन से शवाधान के प्रमाण नहीं मिले हैं। गुफा समाधियां, केरल प्रांत में गुफा समाधियों का निर्माण पहाड़ियों की लेटराइट चट्टानों को काट छाट कर किया गया है। ये गुफाएं आयताकार अथवा वर्गाकार मिलती हैं, जिनकी छत प्रायः गुंबदाकार और गुफाओं के प्रवेश द्वार प्रायः 30-35 सेमी आकार के हैं। गुफाओं की फर्श का धरातल प्रायः द्वार से 30-60 सेमी नीचा है। समाधि तक पहुंचने के लिए चट्टान को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन गुफाओं में एक से अधिक मृतकों को एक ही गुफा में दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इनसे मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। केरल के कोचीन जिले में काटकम पाल, त्रिपुर जिले में पोरकलम आदि से इस प्रकार की गुफाएं मिली हैं। अंत्येष्टि कलश, इस प्रकार की समाधियों में मिट्टी के बड़े पात्रों का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार के पात्रों का उपयोग मुख्यतः बच्चों को दफनाने के लिए किया जाता था। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे और तांबे के चित्र 8, पल्लावरम, चिंगलपेट, पादयुक्त अंत्येष्टि कलश, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। चित्र पृष्ठ संख्या 541, चित्र 9, अमृत मंगलम, मत्स्याकार अंत्येष्टि कलश, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। उपकरण कभी कभी अंत्येष्टि कलश में ही भर दिए जाते थे और यदा कदा अंत्येष्टि कलश के बाहर अगल बगल में रख दिए जाते थे। चित्र 10, शाणूर, चिंगलपेट, अंत्येष्टि कलश युक्त डोलमेन समाधि, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पृष्ठ संख्या 442, अंत्येष्टि कलश के अतिरिक्त मिट्टी से एक विशेष प्रकार के शव मंजूषा का निर्माण भी किया जाता था, जिसके दो हिस्से होते थे। शव मंजूषा के नीचे के हिस्से में पशुओं के पैरों की तरह के छोटे छोटे पैर होते थे। मिट्टी के संदूक को आवे में पकाने के बाद दफनाने के लिए उपयोग में लाया जाता था। ब्रह्मगिरी मास्की तथा आदिचन्नल्लूर नामक पुरास्थलों के उत्खनन से अंत्येष्टि कलशों के नमूने मिले हैं। तमिलनाडु में चिंगलपट्टू जिले में स्थित शाणूर नामक पुरास्थल से मृण्मय शव मंजूषा के साक्ष्य मिले हैं। अंत्येष्टि कलश और उनके साथ जो मृदभांड मिले हैं वे दक्षिण भारत के अन्य बृहत पाषाणिक समाधियों से प्राप्त पात्रों से मिलते जुलते हैं, इसलिए पाषाण का पूर्ण अभाव होते हुए भी सांस्कृतिक समरूपता के आधार पर इन्हें बृहत पाषाणिक समाधियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत में लौह काल में मृतकों का अंतिम संस्कार दफना कर किया जाता था। दफनाने के लिए कई प्रकार के विधियां प्रचलित थी। यह कहना कठिन है कि विभिन्न कबीलों में अलग अलग विधियां प्रचलित रही होंगी अथवा इनका कोई विशिष्ट धार्मिक या सांस्कृतिक प्रयोजन रहा होगा।